संख्या सात। यहाँ तक कि नाटक के संगीत पक्ष पर भी उनका ध्यान गया। संगीत तत्व को आवश्यक मानते हुए जिस तरह उन्होंने लोक संगीत या लोक गीतों को नाटक में स्थान दिया, वही इस बात का प्रमाण है कि वह नाटक को लोक जीवन जनमानस के निकट लाने का प्रयास कर रहे थे और देशव्यापी आंदोलन या मानसिक परिवर्तन के लिए नाटक का उपयोग सशक्त अस्त्र के रूप में कर रहे थे। यह नहीं भूलना चाहिए कि नाट्य शास्त्र नाट्य रूढ़ियों का ग्रंथ होते हुए भी लोक जीवन पर विशेष बल देता है, क्योंकि जीवन संबंधी अभिनय विधियों का निर्देश भी इसमें है। नाटक की सिद्धि उसके लोक सिद्ध होने में ही मानी है, क्योंकि किसी भी नाटक की सफलता असफलता का प्रमाण लोक ही है। भारतेंदु ने भी लोक प्रवृत्ति लोक जीवन को नाटक का आधार माना और सामूहिक स्तर पर नाटकीय आंदोलन रंगा आंदोलन की आवश्यकता को महसूस किया। उनका युग उनके नेतृत्व में सामूहिक संघर्ष और प्रयत्न का युग है। उनका पूरा मंडल एक ही उद्देश्य से सृजन में लगा हुआ था। नाटक रचना, नाट्य कला, नाट्य समीक्षा सभी के प्रति वे एक साथ सतर्क थे। प्रेमधन ने अपनी समीक्षाओं में नए नाट्य शास्त्र के आवश्यकता पर बल देते हुए अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के नाटकों के आधार पर नाट्य सिद्धांतों की रचना उचित मानी थी और हमेशा अभिनय तत्व को प्रधानता दी थी। एक पूरे लेखक मंडल, पूरे दल की सक्रियता सामूहिक स्तर पर नाट्य आंदोलन और रंगा आंदोलन की अनिवार्यता का अनुभव जो उस समय था, उस रूप में आज भी नहीं है। यद्यपि नाटक बहुत सी सीमाओं को तोड़कर बाहर आया है और हिंदी रंगमंच जैसी अनुभूति भारतीय रंगमंच के संदर्भ में पैदा हुई है। इसी युग ने बहुत से अच्छे प्रहसन दिए जो आज भी नाटक इतिहास में उंगली पर गिने जा सकते हैं। लेकिन भारतेंदु काल का यह सारा एकनिष्ठ एकोन्मुख प्रयास वहीं रुक गया, उसका क्रम आगे नहीं बढ़ा। जयशंकर प्रसाद जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के आने पर नाटक के साहित्यिक पक्ष और उसकी सोद्देश्यता में तो परिष्कार हुआ, लेकिन नाटक अपने माध्यम रंगमंच में सर्वथा कट गया, जिसका मुख्य कारण था नाटककारों में पारसी कंपनी के व्यावसायिक रंगमंच की उपेक्षा। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु व्यावसायिक रंगमंच के दोषों से और नाटक को सस्ते कुरुचिपूर्ण मनोरंजन तक ले आने की विषम स्थिति से परिचित नहीं थे। उसका उन्होंने बहिष्कार भी किया, विद्रोह विरोध भी किया, लेकिन साथ ही वह उस रंगमंच की आवश्यकता के प्रति भी उतने ही सचेत थे। उनके बाद बेताब आगा हर्ष, काश्मीरी, हरिकृष्ण जौहर, शैदा आदि ने व्यावसायिक रंगमंच का कला पक्ष ऊंचा करने के लिए उन्हीं के लिए नाटक लिखे, जिससे रंगमंच का कुछ लाभ अवश्य हुआ, लेकिन नाटक साहित्य को कुछ महत्वपूर्ण उनसे नहीं मिला। प्रसाद ने अपने सारे नाटक पारसी रंगमंच की घोर प्रतिक्रिया में लिखे, जिसकी एक परंपरा बन गई। यहाँ यह मान लेना होगा कि प्रसाद के अधिकांश नाटकों का रूप बंधन और रंग विधान एकदम पारसी थिएटर से हुआ है, यानी प्रसाद के नाटकों में सारा दृश्य बंध रंगीन पर्दों का है। किसी हद तक अभिनय में भी यांत्रिकता है। ब्रैकेट में ध्रुव स्वामिनी या अन्य नाटकों के बीच बीच के कुछ स्थल छोड़कर जो उनकी व्यक्तिगत विशेषता मौलिकता है। ब्रैकेट क्लोज। पृष्ठ संख्या आठ। उसी प्रकार के गीत योजना, नृत्य दरबार, समूह गान और चमत्कार की प्रवृत्ति भी है। उन्होंने सारा ध्यान साहित्यिकता, काव्यात्मकता, भारतीय दृष्टि, आदर्श, चरित्र बल, सांस्कृतिक चेतना पर नाटक के बहुमुखी उत्तरदायित्व पर केंद्रित कर दिया और रंगमंच के दायित्व से अपने को मुक्त कर लिया। इनमें कोई संदेह नहीं कि प्रसाद ने हिंदी नाटक को कई मानों में समृद्ध किया। नाटक को काव्य तत्व से जोड़कर उसमें सूक्ष्म सौंदर्य पैदा किया, छायावादी काव्य गीत दिए, इतिहास को नई दृष्टि, संभावनाएं दी, उसे वर्तमान जीवन आधुनिकता बोध से जोड़ा, उसके ढांचे में अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान दिया। अपने ऐतिहासिक चरित्रों को मानवीय दृष्टि से चित्रित किया, लेकिन अपने सर्वथा नए रचना विधान के लिए उन्होंने उसके अनुरूप नई रंग शैली की खोज नहीं की। उनका पारसी रंग विधान उनके काव्यात्मक साहित्यिक नाटकों के एकदम विपरीत है। एक ओर काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, दूसरी ओर रूपबंध पारसी थिएटर का। ये दोनों इतनी विरोधी प्रवृत्तियां हैं कि प्रसाद का नाटक बिखरा हुआ दिखाई देता है। अजात शत्रु चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में उन इतिहास कालों की समूची परिस्थितियों को उन्होंने कहना चाहा है। पूरा ऐतिहासिक वातावरण भी, धार्मिक संघर्ष भी, राजनैतिक परिस्थितियां भी, आंतरिक गृह कलह, राजनैतिक अराजकता भी, आर्य संस्कृति भी, दर्शन भी, स्त्री पुरुष के संबंधों पर विचार या वाद विवाद भी परिणामतः कथानक असंगठित लगता है। बहुत से पात्रों की भीड़, अंक विधान, छोटे छोटे बहुत से दृश्य, कुछ चरित्र उभर नहीं पाते, कुछ स्थितियां दब जाती हैं। पाठ्य तत्व मुख्य हो जाता है और रंग तत्व कम या दोषपूर्ण रूपबंध। प्रसाद के विपरीत भारतेंदु प्रत्यक्ष रंगमंच से जुड़े हैं और स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रसाद के समय से साहित्यिक नाटकों और रंगमंचीय नाटकों के बीच व्यवधान पैदा हो गया। इसका प्रभाव नाट्य समीक्षा पर भी पड़ा। साहित्यिक नाटकों के लिए समीक्षक ने प्राचीन नाट्य शास्त्र के मानदंडों को ही उपयोग मान लिया। व्यावसायिक रंगमंच के लिए लिखित नाटकों में जो परिवर्तन हो रहे थे, समीक्षक भी नाटककार की तरह उस ओर से एकदम विमुख रहा। और उस समय जबकि व्यावसायिक रंगमंच से नाटककार समीक्षक कुछ दृष्टि परिवर्तन कर सकते थे, रंगमंच को दे भी सकते थे, एक अलगाव पैदा हो गया। परंपरा चल पड़ी। शास्त्रीय परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर साहित्यिक नाटकों के मूल्यांकन की। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन ब्रैकेट में डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ब्रैकेट क्लोज समीक्षा पुस्तक से यह परंपरा ऐसी चली कि प्रसाद के नाटकों का भी सही मूल्यांकन लंबी अवधि तक संभव नहीं हो सका। सारा हिंदी नाटक भारी बीमारी में जकड़ गया। नाटककार पाठ्यक्रमीय नाटक लिखने लगे। समीक्षक शास्त्रीय सिद्धांतों के वर्गों खानों में बांटकर नाटक का शास्त्रीय अध्ययन करने लगे और अंततः नाटक कोरी क्लासरूमीय सिद्धांत चर्चा बन गया। यह दुर्गति आज भी ज्यों की त्यों है। कक्षाओं और परीक्षा प्रश्नों में एक प्रचलन हुआ संवादों की व्याख्या करने का, परीक्षाओं में संवाद स्थलों की व्याख्या पूछने का। तात्पर्य यह कि भरत मुनि और भारतेंदु के बाद नाटक के अध्ययन रंगमंच की सीमाओं की जानकारी और उसके आग्रह की धारा लुप्त हो गई, जो आगे चलकर लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रेमी सेठ आदि में भी नहीं मिलती। पृष्ठ संख्या 9। इन सभी ने अभिनेता और दर्शक की कल्पना किए बिना कोरे पाठ्य नाटक लिखे। नाटककार तर्कों, विचारों, वाद विवाद के बौद्धिक जाल में फंस गया। क्योंकि हिंदी का अधिकांश नाट्य साहित्य प्रतिक्रिया में लिखा गया। सब भूल गए कि नाटक कोई कथात्मक वार्तालाप नहीं है, यद्यपि प्रसाद के बाद हिंदी नाटकों की बड़ी लंबी सूची है। नाटक और यथार्थ, नाटक और रंगमंच के संबंध को समझने की कोशिश उपेंद्र नाथ अश्क में दिखाई दी। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो करीब 40 वर्ष की भयानक दूरी रंगमंच और नाटक के बीच दिखाई देती है। आज भी रंगमंच व्यावसायिक या शौकिया संस्थाओं के प्रति वह दृष्टि नहीं पनपने पाई जो आवश्यक है। पारसी थिएटर से अगर उस समय रंगमंच की आवश्यकताओं को अनुभव किया गया होता और अन्य बहुत से अव्यावसायिक नाटक दलों को प्रोत्साहन मिला होता, तो हिंदी भाषी क्षेत्र नाटक और रंगमंच क्षेत्र में इतना दरिद्र न रहा होता। जबकि बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में नाटक जीवन का एक अंग बन गया है। हमारे यहाँ एक स्थायी प्रश्न बन गया कि हिंदी का रंगमंच क्या है, कैसा है। सही रंग चेतना और नाट्य लेखन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही सामने आया। एक ओर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, देशांतर जैसी संस्थाएं, दूसरी ओर अलकाजी और मोहन महर्षि जैसे निर्देशकों, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा जैसे नए नाटककारों ने नाटक की मूल सत्ता की खोज की। अलकाजी ने हिंदी रंगमंच को भारतीय गौरव दिया। मोहन राकेश ने नाटककार की खुली दृष्टि, सहयोग मनोवृत्ति और नाटक की मौलिकता की समझ का परिचय दिया। ओम शिवपुरी जैसे अभिनेताओं ने अभिनय को कला और मर्यादा दी। लक्ष्मी नारायण लाल स्वयं निर्देशक, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, समीक्षक बनकर रंगमंच की गतिविधियों के साथ रहे। आषाढ़ का एक दिन वह पहला नाटक है जिससे रंगमंच की शक्ति और संभावनाओं को पहचाना, एक पूरा दल तैयार किया। रंग कर्मियों का एक पूरा दल। हिंदी के नए नाटक ने मोहन राकेश से आज तक विभिन्न रंग शैलियों प्रयोगों को लिया और यह दृष्टि पैदा की एक ही नाटक पर भिन्न भिन्न प्रयोग संभव है। विभिन्न भाषाओं, फ्रेंच, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, कन्नड़ आदि से होने वाले हिंदी अनुवादों और उनकी प्रस्तुतियों ने भी नाटक के मूल रूप को समझने, उसके विशिष्ट कला रूप को पहचानने में बहुत सक्रिय योग दिया है। हिंदी के मौलिक नाटककारों में इस समय मोहन राकेश के बाद लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मुद्रा राक्षस, अमृत राय, ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, गिरिराज किशोर, विपिन कुमार अग्रवाल, शंभुनाथ सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने नाटकों और पत्र पत्रिकाओं में निकलने वाली नाट्य समीक्षाओं में एक दृष्टि पैदा की है। भयानक शून्य को भरा है और साहित्य रंगमंच के बीच की खाई को पाटा है। नटरंग पत्रिका इस अर्थ में सदैव स्मरणीय रहेगी। नेमी चंद्र जैन की संपादकीय टिप्पणियों और आमंत्रित परिचर्चाओं में और इधर की कुछ नई समीक्षा पुस्तकों में यह तथ्य बार बार सामने आया है कि शास्त्र, पूर्वाग्रहों या तात्कालिक रुचियों के फ्रेम में नाटक को बैठाना गलत है।